ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போக கிஸ்கே லியே ஹே? போகனே கே லியே நஹி, போக பாலன் கே லியே. போக பாலன் கிஸ்கே? இந்திரியோ கா பாலன், மனே अपनी ये इंद्रियां जो अज्ञान से युक्त हैं, उनका पालन करना चाहिए. परंतु जो लोग केवल इंद्रियों को ही सब कुछ समझ करके न तो कर्म को समझते हैं न आत्मा को समझते हैं, केवल जो इंद्रियों के विषय में लोलुप्त होकर के चलने वाले लोग हैं, उनके लिए कहा कि वो लोग असूर्या नामते लोका तमसान, अंधकार से भरे हुए लोक में, माने वह लोक जहाँ बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, जिसके लिए भगवान भाष्यकार ने कहा है पुनरवि जन्मम पुनरवि मरणम पुनरवि जननी जटरे शयनम. बार बार जन्म ले, बार बार मरे, बार बार माँ के गर्भ में वास करें. मोह जाल से समाप्त होकर के, आसक्त होकर दिन रात भोगों के पीछे पड़े रहते हैं, भोग भोगने में लगे हुए हैं. जिनकी कामना केवल भोगों को भोगने में लगी है, परंतु ये भोग ऐसे ऐसे हैं, न काम्यन शम्यन्तु भोगेना. कामना कभी शांत नहीं होती है भोगों को भोगने से. महाराज ययाति ने भोग भोगने के लिए अपना वृद्ध शरीर पुत्र को देकर पुत्र से युवा शरीर ले लिया और अपने शरीर को बदला, और शरीर को बदलकर महाराज ययाति ने बहुत समय तक भोगों को भोगा. परंतु भोग भोगते हुए उन्हें एक दिन ये विचार हुआ, इतने लंबे समय तक जिन भोगों के लिए मैंने अपना शरीर तक बदल दिया, वृद्ध शरीर पुत्र को देकर जवान शरीर मैंने पुत्र से प्राप्त किया, और जवान शरीर को लेकर मैं भोग भोगते हुए मेरी तृष्णा शांत नहीं हुई, मेरी कामना शांत न काम्यंतु सम्यंतु. कामनाएं कभी भोग से शांत नहीं होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि भोग भोग करके कोई व्यक्ति ये अपनी कामनाओं को इच्छाओं को शांत कर लेना चाहे तो ये तो ऐसा ही समझना चाहिए कोई यज्ञ में बार बार घृत आहुति दे रहा हो, आग में अग्नि में घी की आहुति दिए जा रहा हो, और मन में आशा करके बैठा हो कि इसकी लपटें शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए. जैसे जब तक घी डलता रहेगा अग्नि शांत होने वाली नहीं है, उसी प्रकार जब तक भोग भोगते रहेंगे तब तक ये भोग की वासना कभी समाप्त होने वाली नहीं है. तो कहा अंधे जो अंधकार से युक्त है, अर्थात मोह से, मोह के जाल में समावृत है, अंधकार से अभिप्राय है यहाँ मोह का. मोह किससे है? बोले इंद्रियों के विषयों के साथ, और अज्ञान में पड़े हुए आसक्त होकर भोग भोगने में दिन रात लगे हुए ऐसे लोगों को कहाँ जाए, वो कौन है? बोले वो तो आत्महत्या. तास्ते प्रतिज्ञा भी गच्छति ये के चात्महनो जना, वह लोग तो आत्महत्यारे हैं. उसको श्रुति ने उसे आत्मघाती बताया है. बोले वो आत्मघाती ऐसे हैं, आत्मघाती कहकर उसकी निंदा की है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पाप करते हैं. आत्मघात तो बहुत बड़ा पाप कहा गया है. बोले वो आत्मघात करते हैं, अपनी आत्मा को न समझने के कारण वह अपने आप को मरने वाला जन्मने वाला समझते हैं. मैं अपनी आत्मा को के ऊपर अन्य के धर्म को अन्य के ऊपर आरोपित कर देते हैं. तो किसी निर्दोष के ऊपर कोई दोष लगा दिया जाए तो आप उसे क्या बोलते हैं? ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है कि निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ये दोष उसके ऊपर मर दिया गया है, लगा दिया गया है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। उसी प्रकार ये आत्मा जो अत्यंत निर्दोष है, पवित्र है, निष्पाप है, उस आत्मा को न समझने के कारण उस आत्मा में ये दोष लगा देते हैं कि मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ, इस प्रकार मैं के ऊपर ये दोष आरोपित करते हैं। जो अनात्म धर्म है वो आत्मा के ऊपर आरोपित करने के कारण उसको कहा आत्महनोजना, वो तो आत्मघाती के समान है, अर्थात अपने आप को न पहचानना। जो लोग स्वयं को नहीं पहचानते हैं, स्व को नहीं जानते हैं, वो आत्महत्यारे हैं, इसलिए उनकी बड़ी भारी निंदा की है। उनकी निंदा करते हुए कहा कि वो लोग कहाँ जाएंगे? बोले वो तो वहाँ जाएंगे जहाँ असूरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता, वो तो उस लोक में जाएंगे जहाँ असूर्य है, माने आसुरी, आसुरी भाव से। असुरी कौन है? बोले ये इंद्रियां ही असुर है। सुर यानी जिसको प्रकाश है, ज्ञान है, इंद्रियों को कुछ ज्ञान नहीं है, और इंद्रियों के जाल में मोह से समावृत होकर के वो बार बार भोगों के पीछे ही जन्मते और मरते रहते हैं, इसी क्रम में पड़े रहते हैं, पुनर्विजन्मम पुनर्विमरणम। इसलिए ऐसे भोगों को हम पहले इंद्रियों को समझें, इंद्रियों के विषयों को समझें, विषय सहित इंद्रियों को अपने से पृथक कर, अलग कर, भिन्न करके अपने को अलग देखें, और जब अलग करते हुए अपने स्वरूप में सबसे पहले शरीर, शरीर के साथ कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के साथ ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के साथ हम पंच, जो हमारे पंचभूतों को अलग करें, पंच तन्मात्राओं को अलग करें, जो पंचीकृत है, पंच कोष को अलग करें, पंच प्राण को अलग करें, चित्त को अलग करें, बुद्धि को अलग करें। जैसे मैं कई बार कहती हूँ, प्याज की गांठ हाथ में लो ना, और उसकी एक एक परत करते हुए गिराते चले जाओ, एक परत निकाली, दूसरी परत निकाली, तीसरी परत निकाली, सब परत एक एक करके छोड़ते जाओगे, प्याज के छिलके की तरह हटाते जाओगे, तो आखिर आपके हाथ में क्या बचेगा? कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है, वहीं तुम हो, वहीं तुम हो। जब तक कुछ न कुछ है, ये कुछ कुछ हम लेकर के जो बैठे हुए हैं, अर्थात विवेकता के साथ, ज्ञान के साथ हमें ये विचार करना होगा कि इंद्री और इंद्रियों के जो भोग हैं, जो बहुत बाह्य स्तर पर जिनके साथ हम दिन रात हमारी आसक्ति पड़ी हुई, इसमें आसक्त होकर इन्हीं भोगों के ऊपर बने जा रहे हैं, और यही भोग हमारे लिए दुख का कारण है। नारायण, भोग भोगने के लिए जीवन नहीं मिला है। मैं कहती हूँ, कभी हम सुख को भोगते हैं, कभी हम दुख को भोगते हैं, कभी सुख के भोगी अपने को समझते हैं, कभी दुख के भोगी अपने को समझते हैं। याद रखना, भोग भोगने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन तो भोग से परे परम परमानंद के लिए, आनंद के लिए है। कभी भोग भोगते हुए हम सुख को भोगते हुए अपने को सुखी समझने लगते हैं, दुख को भोगते हुए अपने आप को दुखी समझने लगते हैं। भोगों के कारण सुखी दुखी हम हैं। भोग भोगते कभी सुख कभी दुख भोग रहे हैं, और उसी में अपने आप को दुखी सुखी करते हुए हमारी जिंदगी तमाम हो जाती है। ईमानदारी से पूछो तो इसके अलावा कुछ होता है? अरे मैं बड़ा दुखी हूँ। कभी कहते हैं, अरे मैं बहुत सुखी हूँ, अभी तो बहुत सुखी हूँ। क्या भोग मिल रहे हैं तो अपने को सुखी, और भोग नहीं मिल रहे हैं तो अपने को दुखी। और इसी सुख दुख के द्वंद में इस द्वंद के आघात में हम बहुत बड़ा घात कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं, इसी द्वंद के अंदर पड़े हुए हैं। और श्रुति कहती है जीवन कैसा होना चाहिए, निर्द्वंद, द्वंद से रहित। ये झगड़ा ही नहीं हो, ये द्वंद ही न हो, न सुख हो न दुख हो। सुख दुख से दोनों को हटाओ, सुख को भी हटाओ और दुख को भी हटाओ, और जब दुख भी हट जाएगा, सुख भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या? परमानंद, आनंद शेष रहेगा। जब तक सुख दुख आता रहेगा, कभी सुख आता रहेगा कभी दुख आता रहेगा, तब तक आपको उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी। यदि आनंद की अनुभूति को करना है तो इन दोनों को अपने से दूर अलग करना ही होगा। परम परमानंद वही जीवन है, और परमानंद ही जीवन है नारायण। परंतु हमने जीवन को क्या समझ लिया है? जीवन होना एक अलग बात है, जीवन अलग चीज है, जन्म अलग चीज है। जन्म तो हमें मिला मनुष्य का, परंतु जन्म पाकर के हमको वो जीवन मिला कि नहीं मिला? जीवन हम सबका दिव्य है, दिव्य का मतलब मान, तेजस्वी, जिसमें तेज है, प्रकाश है, उसे जहां अंधकार नहीं है वो जीवन है, दिव्य जीवन। जो आत्म स्वरूप में है वो हम आज दिव्य जीवन है। परंतु जन्म को हमने, जीवन को जन्म मान लिया है, जीवन को हमने जन्म मान लिया है, और हम जन्म के साथ जीते हैं, जन्म के साथ साथ जीते हैं। किसी से पूछो भैया ये जीवन कब से चला आ रहा है, वो सीधा सा उत्तर देगा कि भाई जब से मेरा जन्म हुआ तब से जीवन मुझे मिला है। और उससे पूछो कि ये जीवन कब तक रहेगा, बोले जब तक मरूंगा नहीं तब तक जीवन रहेगा। याद रखना, जीवन न जन्म से आरंभ होता है और न मृत्यु से समाप्त होता है। जीवन का जन्म से कोई मतलब नहीं है, जीवन जन्म से नहीं मिला है, जन्म से पहले भी जीवन था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो जीवन है जिसका जन्म मृत्यु के साथ कोई नाता नहीं है। पर जन्म मृत्यु के साथ जो जीवन चल रहा है, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, वो जीवन नहीं है, वो तो जीव कभी सुखी और दुखी, सुखी और दुखी, इस द्वंद के साथ चल रहा है, इस द्वंद के साथ। और आप क्या चाहते क्या है? मेरा जीवन निर्द्वंद हो, मेरे पर ये झगड़ा नहीं, मुझे इससे अलग होना है, चाहता तो ये है। परंतु जब तक दुख कोई नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं, अंधकार कोई नहीं चाहता है, सब प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, अंधकार से आपको डर लगता है, ये आपके स्वभाव में है। कोई भी आदमी यदि अंधकार को पसंद करता हो तो कोई रात अपने घरों में लाइट लगाएगा? जहां लाइट की व्यवस्था नहीं होती है वहां दिए की व्यवस्था करता है, कैंडल की व्यवस्था करता है। उससे पूछो भले आदमी से कि तू ये सब व्यवस्था क्यों करता है, वो कहेगा मुझे अंधेरा, रात अंधेरा होता है ना, रात को अंधेरा अच्छा नहीं। सब अंधकार को कोई पसंद नहीं करता, किसी को प्रिय नहीं है, पर प्रिय नहीं है उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था करता है, उसके लिए वो सबको प्रिय क्या है, प्रकाश ही है। परंतु यार कोई ये प्रकाश तो प्रिय है, पर इस प्रकाश की प्रियता के साथ कोई ये समझे कि अंधेरा होए नहीं, तो ऐसा हो सकता है? उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार रहता है कि जब उजाला हुआ है, सूर्योदय हुआ है, तो सूर्यास्त भी होगा, और सूर्यास्त के साथ अंधकार होगा, तो उस अंधकार के लिए वो पहले से तैयार रहता है। उसके लिए तैयार होकर उसके निवारण के लिए वो अपने आप को तैयारी कर लेता है, इसलिए उसे रात के अंधेरे का डर नहीं लगता। तो कहने का अभिप्राय ये था, हम एक चीज की सुख के लिए तो तैयार रहते हैं हर समय, हमारी तत्परता केवल सुख के लिए रहती है, बस अनुकूलता ही अनुकूलता रहे, परंतु प्रतिकूलता आने वाली ही है। प्रतिकूलता आएगी तो उस प्रतिकूलता में आप अपने को प्रसन्न कैसे रख सकेंगे? वो प्रतिकूलता आए ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो आएगी, पर प्रतिकूलता आएगी तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की? कुछ तैयारी की? उस प्रतिकूलता में अनुकूलता को पकड़ोगे तो प्रतिकूलता के लिए भी आपको तैयार होना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा काम करो ना कि ना तो अनुकूलता को, जब अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को छोड़ोगे, न तो अनुकूलता न प्रतिकूलता, तो न आपको किसी को पकड़ना पड़ेगा न किसी को छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी जगह समचित्त रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो स्थिरता जीवन है और विचलितता मृत्यु है। स्थिरता जीवन है और विचलितता मृत्यु है। नारायण, हमें विचलित नहीं होना है, हमें स्थिर होना है। स्थिरता में अपने निजानंद को, निज के परमानंद स्वरूप को प्राप्त करना है। तो ये उपनिषद हमें यही बताना चाह रही है कि यदि हम ऐसा नहीं किए, न तो हम प्रवृत्ति को पकड़े, न हम निवृत्ति को पकड़े, न प्रवृत्ति समझ में आई, न निवृत्ति समझ में आई, इन दोनों मार्गों का त्याग करके दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। श्रुति कहती है इन दो मार्ग के अतिरिक्त तीसरा मार्ग कोई है ही नहीं। तीसरा यदि है तो फिर ये यही है, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसाव्रता। तीसरा तो यही है भैया, तुम्हें अंधेरे में जाकर, अंधेरे कुएं में जाकर गिरना पड़ेगा। पर अंधेरे कुएं में गिरना किसी को पसंद नहीं है। तो इसलिए आइए अपने लिए मार्ग, मेरे लिए कौन सा रास्ते, दोनों अच्छे हैं। रास्ते दोनों ही अच्छे हैं, मार्ग दोनों अच्छे हैं, पर इन दोनों मार्ग में कौन सा रास्ता मेरे लिए है, ये चयन मुझे करना होगा। मेरी मुझे लिए कौन सा रास्ता सुविधाजनक है, ये हमें देखना होगा। कि एक मार्ग वो है जो राजपथ का है, और दूसरा मार्ग वो है जो बड़ा ही कंकड़ीला तो है, कठिन तो है, पर लक्ष्य तक पहुंचने वाला है, निवृत्ति का मार्ग है। जो निवृत्ति मार्ग है वो मार्ग ऐसा मार्ग है कि देखने में भले वो सुंदर नहीं हो, आकर्षित नहीं हो, परंतु वो मार्ग यथार्थ को देने वाला, सत्य को ले जाने वाला है। दूसरा मार्ग राजपथ है, कर्म का मार्ग है। राजपथ इस पर, पथ पर चलकर कर्म के मार्ग, कर्म करते हुए जब तक जिए सत्कर्म करते रहे। बिना कर्म के ना तो शरीर को रखा जा सकता है। एक बात ध्यान रखना नारायण, जब तक शरीर रूपी रथ है तब तक इस रथ को चलाने के लिए कर्म इस रथ का संचालन करता रहेगा। कर्म ही इस शरीर रूपी रथ का संचालन करेगा, और शरीर कर्म के बिना रखा नहीं जा सकता है। और जब कर्म नहीं होगा तो कर्म और शरीर के बीच जो शरीर चलेगा, बोले वो कैसे चलेगा, कैसे शरीर को चलाएंगे, कर्म से चलाएं। पर वो कर्म वासना से प्रेरित होकर के न हो, वो कर्म वासना से रहित हो, और वो कर्म वासना से युक्त न हो। यदि वासना से युक्त होगा कर्म, तो उस वासना के कारण फिर से हमें उसी शरीर को, जैसी वासना होगी उस वासना के अनुसार फिर हमको शरीर मिलेगा, फिर हमको उसी प्रकार का भोग मिलेगा, और फिर भोग भोगने की व्यवस्था होगी। और यदि वासना से रहित होकर कर्म होगा, तो वो कर्म शरीर रूपी रथ को चलाते हुए 100 वर्ष तक जीते, जीने की इच्छा करते हुए अंततः वो निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होकर परमार्थ स्वरूप में एकता बनेगी। नारायण, परमार्थ की प्राप्ति हुई, परम परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए उस मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर जब तक है तब तक कर्म करते रहें, यही ये उपनिषद हमें, ये मंत्र के द्वारा हमें ये बताया गया है। तो तीसरा जो मार्ग है वो बड़ा कठिन मार्ग है, उस मार्ग में नहीं जाना चाहिए। असुरिया लोग, ये अंधकार वासनामय मार्ग, जो लोग धर्म को नहीं समझते हैं, सत्य को नहीं समझते हैं, दिन रात जिन्होंने यावत जीवित सुखम जीवित, चार वाक को मानने वाले लोग भी है ना, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा 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 पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा भी एक हमारे यहाँ मत है जिसे चार वाक मत कहते हैं। ये चार वाक मत वाले केवल शरीर को ही सब कुछ समझ करके, केवल शरीर के लिए ही जीते हैं, वो खाने के लिए ही जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते, वो तो केवल खाने के लिए जीते हैं। जो केवल विषयों को भोगने के लिए जीते हैं, जिनका उद्देश्य है बिल्कुल भोग, जब तक जियो खूब भोग भोगो और मौज करो, जो मौज करने वाले लोग होते हैं नारायण, उनको उनके कर्म का फल, क्योंकि कर्मणों गति गहन है, कर्म की गति बहुत गहरी है, कर्म भोग भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता है, अवश्य में भोगतव्यम, अवश्य में उन्हें भोग भोगना ही पड़ता है, वो भोग भोगते हुए बार बार संसार के क्रम में जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, संसार के थपेड़े उन्हें मिलते रहते हैं, जैसे नदी में बहती हुई कोचिन कभी नदी के इस तट में कभी उस तट में कभी नदी की तेज धारा के साथ बहती है, अर्थात इसी प्रकार उनका जीवन इस जन्म मृत्यु के कर्म में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी सोचो तो सही, चलते चलते चलते, नाचते नाचते नाचते, एक शरीर में नहीं 84 लाख योनि का शरीर मिला, और हर योनि में नाचे, हर योनि में नाच नाचते 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 अंत में मनुष्य योनि मिली है। तो अब तो गोविंद से कहो, भगवान से कहो, अब मैं बहुत नाचो गोपाल, अब मैं बहुत नाचो गोपाल, मैं बहुत नाच लिया हूँ, नाचते नाचते थक चुका हूँ, आपके चरणों में गिर पड़ा हूँ, और यदि 84 के नाच को नाचते हुए मेरा नाच पसंद आ गया हो आपको, मेरे नाच में आपको प्रसन्नता मिली हो, खुशी मिली हो, तब भी आप मुझे कह दें, और जो मैं चाहूं वो पारितोषिक मुझे दे दे, इनाम दे दे, बस यही मेरी चाह है कि गोविंद मैं आपको प्राप्त हूं, और यदि मेरा नाच पसंद नहीं आया तो फिर भी मुझे कह दो कि तेरा पसंद नहीं आया, जब मैं इस लायक नाच नाचने के लायक हुई नहीं तो फिर मुझे आप क्यों भेजते हो, मुझे अपने पास ही रहने दो, अपने में ही मिला लो, है ना। दोनों तरह से पसंद आया तो जो मैं मांगू वो मुझे इनाम दो, मेरी मांग यही है, धर्म न अर्थ न काम गति पद न चहूं निर्माण। भक्त कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ नहीं मिल चाहिए उसे भगवान मिलते हैं, मुझे तो सिर्फ मैं सिर्फ आप चाहिए, मेरी मेरा पारितोषिक यही है कि मैं आपको चाहूं, आपको पाऊं, आप मेरे से मिलें, बस ये मेरा इनाम मुझे मिल जाए, और यदि पसंद नहीं आया तो मुझे धुतकार दो, तू ठीक नहीं किया, गलत नहीं किया। जब मैं गलती ही करता हूं तो फिर भेजते ही क्यों हूं प्रभु, इस लायक नहीं हूं मैं, है ना। भगवान के चरणों में आकर के ऐसा करो तो बात बनेगी, नहीं तो 84 योनियों में भटकते भटकते थक जाएंगे नारायण। बड़ा ही जटिल मार्ग है ये, इसलिए जीवन को संवार ले, जीवन आनंदमय बने, परम परमानंद के साथ, परमानंद है अपने स्वरूप में, परमानंद विषयों में नहीं है, इसलिए विषय त्याग कर, और परमानंद है कुछ न करने में। कुछ न करने का मतलब ये नहीं कि कर्म को छोड़ दो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, माने वासना को छोड़ो, और उसकी वासना का त्याग करके जब बैठेंगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शेष चर्चा कल के प्रसंग में करें।